ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग को पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट करने और बिना फायर एनओसी वाली इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सीयूईटी परीक्षा वर्ष 2025 से 37 के बजाय 63 विषयों में होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। मानवाधिकारों के संबंध में सार्वभौम घोषणा की याद में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है। मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर अपराध और जलवायु परिवर्तन मानवाधिकारों के लिए नई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग परिवर्तनकारी है, लेकिन इससे साइबर बुलिंग, डीप फेक, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और गलत सूचना के प्रसार जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने तथा युवाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए नीतियां लागू करके दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है।
हमें प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे ना छूटे। एक साथ निरंतर और एकजुटता के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति उम्र, पृष्ठभूमि या परिस्थिति की चिंता किए बिना सम्मान, अवसर और पूर्णता का जीवन जीने के लिए सशक्त रहे।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 3 प्रकाशनों का विमोचन भी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने कहा कि मानवाधिकार दिवस हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की याद दिलाता है, चाहे उनकी पहचान हो या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश के दूरदराज के हिस्सों में कानूनी सेवाओं को सुलभ बनाना है, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ मिल सके।
नालसा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस देश के दूरदराज इलाकों में जहां लोगों को एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट एरियाज है, लड़ाक का एरिया है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहां पे जरूरतमंद जो है जो मेनलैंड से दूर रहते हैं, जो देश की मुख्य प्रवाह में आने को जिनको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिली जाए और उसी के साथ साथ जो कमजोर वर्ग है उन तक भी कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए। नालसा सही ढंग से भारत के हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश करेगा।
श्री गवई ने बताया कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से 7,70,00,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आपराधिक न्यायालयों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि कई कानूनों को अपराध मुक्त किया गया है। उन्होंने रेखांकित किया कि देश में विचाराधीन कैदियों को रखने की क्षमता 4,36,000 है, लेकिन इस समय विचाराधीन कैदियों की संख्या 5,19,000 है। कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना ने बुजुर्ग और असाध्य रूप से बीमार कैदियों के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने इन लोगों की पहचान के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने की बात कही है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल द्वारा पिछले सप्ताह उपराज्यपाल को दिए गए ज्ञापन के बाद उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की थी और राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि इन सभी घोषणाओं को दिल्ली में फिर से उनकी सरकार बनने पर लागू किया जाएगा।
तो ये 5 चीजें लागू की जाएंगी। एक, किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए हर ऑटो वाले को दिए जाएंगे। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। और पांचवा, पूछो ऐप, इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो ये 5 बड़े ऐलान आज मैं ऑटो वाले सभी भाइयों के लिए करना चाहता हूँ।
पूर्व मुख्यमंत्री आज राजधानी के कोंडली इलाके में अपने परिवार के साथ एक ऑटो चालक के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑटो चालक परिवार के साथ भोजन भी किया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पार्षद ताहिर हुसैन के नाम की घोषणा की है। श्री हुसैन पर वर्ष 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में संलिप्तता का आरोप है और वो फिलहाल जेल में हैं। भाजपा ने श्री हुसैन को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की कड़ी आलोचना की है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा है कि श्री हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी हैं जिसके लिए वो जेल में सजा काट रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने आवास का भाजपा ने आज एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में उपलब्ध सभी सुविधाओं और साज सज्जा के बारे में दिखाया गया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि श्री केजरीवाल दावा करते हैं कि वो गाड़ी, बंगला और सुरक्षा जैसी सुविधाएं कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन इस वीडियो से साफ है कि उनके घर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। भाजपा ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लगभग 4 करोड़ रूपये से अधिक का खर्च किया था।
का मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो।
घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वीडियो तुम्हारी काली कमाई का सच।
तो अरविंद केजरीवाल ने शराब की काली कमाई, जल बोर्ड का घोटाला या ये घोटालों की सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया।
दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी ने आज अपने क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव झेल रही दिल्ली में जल्द ही आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज राजौरी गार्डन के उस रेस्तरां का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जहां कल आग लगी थी। उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं, इसके लिए अग्निशमन विभाग को पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बिना फायर एनओसी वाली इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया है।
जो ये रेस्टोरेंट है इसका फायर एनओसी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कैंसिल कर चुकी है। एमसीडी ने भी इस रेस्टोरेंट को क्लोजर के ऑर्डर दे दिए। इसके बावजूद भी रेस्टोरेंट चल रहा था, उसके किचन के अंदर क्या हो रहा था इस बात का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस अभी कर रही है। जो जो भी इस आग लगने के लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री और वर्तमान में भाजपा नेता कैलाश गहलोत ने आज राजधानी के महिपालपुर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर विकास के मुद्दों पर चर्चा की। श्री गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के कारण गांव और शहर दोनों ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आकर भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और जिससे विकास के नए युग की शुरुआत होगी। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आज पालम विधानसभा इलाके के दौरे पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर वहां की समस्याएं जानी। इस दौरान उन्होंने पालम में पानी के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसे साझा करते हुए कहा, दिल्ली के पालम में जनता काफी समय से पानी के लिए तरस रही है और दिल्ली सरकार है कि इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जनता ने बताया है कि नल में पानी नहीं आता, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड हजारों लाखों के बिल भेज रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में छात्रों को कक्षा 12वीं में पढ़े गए विषयों के अलावा कोई भी विषय लेने की छूट होगी। ये जानकारी आज यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने पसंद का विषय चुनने में सुविधा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से 37 के बजाय 63 विषयों में आयोजित की जाएगी।
विश्वविद्यालयों को एक ही राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके CUET ने प्रवेश को सुव्यवस्थित बनाया है। छात्र वर्ष 2025 से अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 6 थी। इस साल पहली बार परीक्षा का आयोजन हाइब्रिड मोड में किया गया। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, प्रादेशिक समाचार के लिए।
संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए साक्षात्कार में शामिल होंगे। उम्मीदवारों के साक्षात्कार की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त अश्विनी कुमार ने आज निगम विद्यालयों की 250 मेधावी छात्राओं को बैंकिंग CSR पहल उम्मीद के सहयोग से साइकिलें वितरित की। साइकिल वितरण शिविर का आयोजन निगम प्राथमिक विद्यालय आरकेपुरम सेक्टर 6 में आयोजित किया गया। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित विष्णुकांत शास्त्री रचना संचयन के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ग्रंथ के प्रकाशन के लिए अकादमी को बधाई दी है। दिल्ली नगर निगम ने आज राजधानी के निजामुद्दीन क्षेत्र में जीरो वेस्ट कॉलोनी का उद्घाटन किया। इस कॉलोनी के साथ ही दिल्ली में जीरो वेस्ट कॉलोनी की संख्या बढ़कर 591 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली एक महिला को अंबेडकर नगर से गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 2 किलोग्राम से अधिक का गांजा जब्त किया गया, जिससे महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि शाम के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी के अधिकारों और गरिमा की सुरक्षा करने वाले समान डिजिटल वातावरण को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग को पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी ऑडिट करने का तथा फायर NOC वाली इमारतों में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।